From the conference center
at Salt Lake City के Temple Square के conference center से हम आपको Church of Jesus Christ of Latter-day Saints की 179 semi-annual general conference के प्रस्तुत session में स्वागत करते हैं। इस session को दुनिया भर हजारों meeting houses में पहुंचाया जा रहा है। इस session के लिए संगीत West Jordan की Stakes के Aaronic प्रस्तुत choir द्वारा प्रदान किया जाएगा।
Dieter F. Uchtdorf,
जो पहले का प्रेसिडेंसी के दूसरे काउंसिल है, वो आज रात के प्रस्तुत सेशन को कंडक्ट करेंगे।
We welcome you, brother.
हम आपका स्वागत करते हैं इस Church of Jesus Christ of Latter-day Saints की 179 semi-annual general conference की प्रस्तुत सेशन में। President Thomas S. Monson ने मुझे इस सेशन को कंडक्ट करने के को कहा है। इस सभा को सैटेलाइट प्रसारण के द्वारा प्रस्तुत के होल्डर के पास टैबरनेकल असेंबली हॉल BYU मैरियट सेंटर प्रोवो मिशनरी ट्रेनिंग सेंटर में और कई देशों में पहुंचाया जा रहा है। इस सेशन के लिए संगीत वेस्ट जॉर्डन यूटा के एरोनिक प्रस्तुत क्वायर द्वारा प्रदान किया जाएगा। नील हेंड्रिक्सन के निर्देशन में और एंड्रू अंसवर्ड ऑर्गन बजाएंगे। हम इस प्रस्तुत सेशन को शुरू करेंगे क्वायर के गाने हाई ऑन द माउंटेन टॉप के साथ। प्रार्थना फिर एल्डर डेनिस बी न्यूशियंडर द्वारा दी जाएगी, जिन्हें इस दोपहर 70 के सदस्य के रूप में से रिलीज किया गया।
Father, we are privileged
and honored. हमारे पिता परमेश्वर, हम खुश हैं कि आज हम इकट्ठा होकर इस प्रस्तुत सेशन में आए हैं और हम चाहते हैं कि आपके पवित्र आत्मा हमारे साथ रहे कि हम सुने और आपके भविष्यवक्ताओं की बातों को और उनका पालन करें और जहां हमें बुलाया गया है वहां पर अपना कार्य अच्छी तरह से करें। और हम जानते हैं हमारे कई भाई और बहने जो मिलिट्री में है सारी दुनिया में कि आप उनके साथ रहें और कि आप उनके प्रार्थनाओं को सुने और उनके परिवारों कि उनको शांति मिले। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हम जहाँ कहीं भी हो सभी जगह शांति प्रकट करें और हमारे हृदय को आप खोलें कि हम आपके विश्वक्ता को सुने। यीशु मसीह के नाम से आमीन।
The choir will now
choir अब गाएगा sweet hour of prayer। गाने के बाद कोर ऑफ द 12 अपोस्टल के एल्डर एम रसल बैलट बोलेंगे, जिसके बाद में 70 की प्रेसिडेंसी के एल्डर वाल्टर एफ गंजालेस से सुनेंगे। उनके बाद 70 के एल्डर यून हुआन चोय बोलेंगे।
Oh, ये एक बहुत ही दिल खुश करने वाला ये झलक है. आप पिताओं को अपने बेटों के साथ में बैठे हों, जैसे भगवान किसी को कपाओगे और जनरल थोड़े से राय को मांगोगे. ये बहुत आनंद की बात होती है प्रीस्टहुड के आदमियों के साथ में इकट्ठा होने के साथ में, क्योंकि हम प्रीस्टहुड वाले हैं. पर खास पिता और बेटा को यहाँ इकट्ठा देख दिल में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. ये एक हमें याद दिला देता है हमारे धर्म के बारे में, प्रीस्टहुड और परिवार के संबंध के बारे में. प्रीस्टहुड वो शक्ति है जिससे परिवार अनंतता के लिए साथ जुड़ते हैं. यीशु मसीह के विस्थापित गॉस्पेल में, जिसमें पवित्र मंदिर के ऑर्डिनेंस हैं, वो इसलिए है ताकि परिवार भगवान के अनंत परिवार का रूप बने हैं. आज मैं तुम पिताओं और बेटों के बारे में बात करना चाहता था कि तुम एक दूसरे से कैसे बात कर सको. ऐसा कोई संबंध नहीं है जो अपने पिता और बेटे के बीच में होता है. ये आनंददायक संबंध है जिससे लड़कों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है. मैं जानता हूँ कि कुछ यंग व्यक्ति हैं जिनके अभी पिता नहीं बन पाए हैं, और कुछ के पास में ऐसे बेटे हैं या जिनके बेटे चल बसे हैं. पर मैं तुम्हें वो कहना चाहूँगा, वो अंकल्स और ग्रैंडफादर्स, प्रेसिडेंट लीडर्स और अदर मेंटर्स,
for these significant father-son relationships.
जो कभी कभार इन महत्वपूर्ण पिता बेटे के संबंधों के में रखते हैं. तुम देखो कि हम सब एक ही यात्रा पे हैं. पिता थोड़े आगे हैं पर हम एक ही जगह मंजिल है पर जा रहे हैं. जैसे हम पिता बनने की कोशिश करते हैं, पिता और बेटे एक दूसरे के लिए बहुत मदद करने की कोशिश करते हैं. और हम जानते हैं कि पिता और बेटे की संबंध कभी भी निर्दोष बना नहीं होगा. पर मैं आपको राय देता हूं कि आप कोशिश करो कि उसे अच्छा बनाओ. बेटो, तुम अपने पिता की आंखों में खुशी का कारण हो. तुम में वो अपने आने वाले समय को देखते हैं. तुम्हारा जो काम है, तुम्हारी ज़रूरतें, तुम्हारी मुसीबतें, उनकी मुसीबतें या ज़रूरतें हैं. पिता, तुम अपने बेटे के लिए, आदमी के लिए मिसाल बनते हो. तुम उनके सबसे बड़े शिक्षक हो. चाहे तुम विश्वास करो न करो, तुम उनके जीवन में कई रूप से मदद करते हो. तुम्हारे जो मिसाल हैं और शब्द हैं, उनके ऊपर उन पर बहुत प्रभाव पड़ता है. आज रात मैं तुमको तीन राय देना चाहता हूँ जिससे तुम अपने संबंध की से पूरा पूर्ण रूप से लाभ पा सको. और मैं फिर पिता को भी तीन राय दूंगा ताकि वो अपने बेटों से ढंग से बात कर पाएँ. हैरानक पृष्ठ होल्डर वहाँ से कहता हूँ कि तुम इन चीज़ों को जैसे तुम करोगे, तुम अपने पिता के साथ में संबंध अब से भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा. पहले अपने पिता पर विश्वास करो. वो निर्दोष नहीं है, पर वो तुमसे प्यार करता है और वो कभी भी तुम्हें वो नहीं करने देगा जो तुम्हारे सबसे अच्छे कारण के लिए नहीं है. तो उससे बात करो. अपने विचारों को, अपने सपनों को, अपने डरों को उन्हें बताओ. तुम्हारे बारे में वो जितना जानेगा, तुम्हारे पास में उतना ही मदद मिलेगी ताकि तुम अच्छी राय पा सको. जब तुम अपने विश्वास पिता पर विश्वास करोगे तो तुम्हें वो जिम्मेदारी मिलेगी और ज़्यादा कोशिश करेंगे ताकि वो तुम्हें समझ सके और मदद कर सकें. एक पिता के रूप में तुम्हें उन्हें तुम्हारे लिए प्रेरणा मिल सकती हैं. तुम्हारे लिए जो राय देंगे उससे व्यक्ति से आएगी जो तुम्हें जानता है और तुमसे प्यार करता है. तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए चाहता है कि तुम खुश हो और सफलता पाओ. तो इसलिए तुम्हें अपने पिता को पर विश्वास करना चाहिए. अपने पिता पर इसलिए विश्वास करो. दूसरा, अपने पिता के जीवन में मैंने प्रश्न पूछे उनके उनके काम के बारे में, उनके प्रयोजनों के बारे में, उनके लक्ष्यों के बारे में, वो तुम्हारी उम्र में किस प्रकार थे, उनके उन्होंने अपनी माँ से कैसे मिला, और जैसे तुम इसके बारे में जाना चाहते हो कि तुम ये जानोगे हो कि उन अनुभव के द्वारा में ये उनको जानोगे तो वो चीज़ कैसे कर सकते हैं। अपने पिता को देखो, उनको देखो कि वो अपने माँ से कैसे व्यवहार करते हैं, कि अपने पुरुष के बुलावों को कैसे करते हैं, दूसरे लोग कैसे बात करते हैं। तुम्हें ये आश्चर्य होगा कि जैसे तुम उन्हें देखोगे और उन्हें सुनोगे तुम कितना सीखोगे। तुम देखो उनके बारे में कितनी चीज़ें नहीं जानते हो, तुम्हारे प्यार और समझ से बढ़ती जाएगी जैसे तुम वो सीखोगे। लड़कों अपने पिता के जीवन में ध्यान दो, और तीसरे अपने पिता को से राय मांगो। पिता तुम्हें अपने राय देंगे चाहे तुम वो मांगो कि या नहीं, पर जब तुम उसे मांगोगे तो वो ज़्यादा अच्छी होती है। तो गिरजे की गतिविधियाँ, क्लास हो, दोस्त हो, स्कूल हो, डेटिंग, स्पोर्ट्स और दूसरी चीज़ों के बारे में उनकी राय को मांगो। जैसे तुम इसकी राय को मांगते हो अपने गिरजे के असाइनमेंट से या मिशन पर जाने के लिए या अपने निर्णयों के लिए जो तुम्हें करने हैं, दूसरे व्यक्ति के लिए तुम उससे ज़्यादा कभी भी सम्मान नहीं दे सकते हो जब तक तुम उनकी राय को नहीं मांगते हो। और इस प्रकार तुम उन्हें कह रहे हो कि मैं आपके अनुभव को रियली सम्मान देता हूँ और आपके राय को भी। उस प्रकार एक पिता जब इन चीज़ों को सोचता है, सुनता है, तो वो बहुत अच्छी लगती है। मेरे अनुभव में पिताओं को हमेशा लड़कों को एक राय देने को कहा जाता है। तुम अपने पिताओं को जब भी राय को मांगोगे तो वो उन्हें और प्रेरणा देता है ताकि वो अच्छे पिता बन पाए और अच्छे आदमी भी। वो और ध्यान से सोचेंगे कि वो किस तरह की राय दें और वो और मेहनत करेंगे ताकि वो ढंग से वो उस रास्ते पर चल पाए जो वो बता रहे हैं। लड़कों अपने पिता से राय को मांगो। पिताओं अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें कुछ चीज़ें करनी है जिससे तुम अपने लड़कों के साथ में तुम्हारे संबंधों को थोड़ा और अच्छा बना पाओ। तुम ये देखोगे कि मेरे तीन रायों के बीच में तुम्हें जो देने वाला हूँ उनमें कुछ चीज़ें एक जैसी हैं और वो ये अचानक की बात नहीं है। पहले पिता अपने बेटों को सुनो, उनसे बिल्कुल ध्यान से, उनसे ढंग से प्रश्न पूछो और हर बार उनसे ढंग से सुनने के बाद में प्रश्न पूछ रहे हैं। तुम्हें ये जानना है कि उनके तुम्हारे बेटे के जीवन में क्या चल रहा है। तुम ये मत सोचो कि तुम जानते हो कि वो कैसे सोचता है, क्योंकि तुम एक समय जवान थे। तुम्हारा बेटा एक बहुत दूसरे जीवन में जीता है जिसमें दुनिया में तुम बड़े हुए, और तुम्हें बहुत ध्यान से सुनना है बिना निर्णय लेते हुए ताकि तुम समझ पाओ कि वो क्या सोच रहे हैं और क्या अनुभव पा रहे हैं। सबसे बढ़िया तरीका ढूंढो जिस प्रकार तुम उनसे जुड़ पाओ। कुछ पिता सोचते हैं कि अपने बेटों को फिशिंग ले जाएं या स्पोर्टिंग इवेंट पे, या आप कुछ बोलते हैं कि यार्ड में साथ करेंगे या ड्राइव पे जाएंगे, पर कुछ लोग रात में बात करते हैं बेड पे जाने के बारे में। पर एक साथ में एक दूसरे के साथ में समय बिताने के साथ का जो संबंध है उससे तुम्हारा संबंध और ज़्यादा मजबूत होता है। हर पिता को एक वार्तालाप चाहिए अपने बेटे के साथ में हर महीने, जिसमें वो कुछ खास अमल चीज़ों के बारे में बात कर सकें, जैसे स्कूल, दोस्त, भावनाएं, वीडियो गेम, टेक्स्ट मैसेजिंग, लायकता, विश्वास और बयान, चाहे वो हो या नहीं हो। ये जरूरी है कि उसे करना है आपको हर महीने। ये याद रखो कि 90% वार्तालाप में अगर आप बात कर रहे हो तो वो एक वार्तालाप नहीं होते, उसमें आप सिर्फ बात कर रहे हो। उन्हें बोलने दो, फिर अपने भावना के शब्द को अपने बात में इस्तेमाल करिए। उनसे पूछो कि वो क्लास में कैसे महसूस कर रहे हैं, अपने दोस्त के बारे में कैसे महसूस कर रहे हैं, अपने प्रीस्टूड के बारे में कैसे महसूस कर रहे हैं, अपने गिरजे के बारे में कैसे महसूस कर रहे हैं। हर चीज़ को ठीक करने की कोशिश मत करो हर बार जब तुम ये बात करोगे। सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो किसी में सिर्फ सुनना है। पिता जो ज़्यादा सुनते हैं बात करने से, वो अपने बेटों से जानते हैं कि जीवन में उनकी क्या चल रहा है। पिता अपने बेटों की बात को ढंग से सुनो। दूसरा, प्रार्थना करो अपने बेटों के साथ में, उन्हें प्रीस्टूड के आशीर्वाद दो। एक बेटा जिसे एक बड़ी एग्जाम का डर लगा हुआ है, वो पिता की प्रीस्टूड आशीर्वाद से जरूर लाभ पाएगा। ऐसी चीज़ें हर स्कूल ईयर की शुरुआत में होती हैं, या एक जन्मदिन, या ऐसी कोई ज़रूरतें होती हैं जिससे भगवान तुम्हें चाहता है कि तुम अपने बेटे को आशीर्वाद दो। एक साथ प्रार्थना और बयान बांटने के साथ में तुम एक दूसरे को भगवान के पास में लाते हो। मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, और मुझे याद है कि कई पिताओं के दिल में दर्द हैं जिनके लड़के रास्ते से भटक गए हैं, जैसे अल्मा और मोजाया ने अपने बेटों के बारे में चिंता करी थी। वो कहते रहो जिससे तुम्हारे परिवार के संबंध ताकतवर बने। कभी भी प्रार्थना में विश्वास में छोड़ो। ये पे जो तुम्हारे अमूल्य बेटे हैं, वो तुम्हारे अमूल्य बेटे हमेशा के लिए हैं, अनंतता के लिए हैं। पिता अपने बेटों के साथ में और उनके लिए प्रार्थना करो। तीसरा, अपने बेटे के साथ में बड़ी बातों वार्तालापों को करो। तुम जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ड्रग्स, शराब, आजकल की मीडिया की चीज़ें, इंटरनेट, साइबर टेक्नोलॉजी, अश्लीलता, अपने प्रीस्टूड की लायकता, लड़कियों का सम्मान और मोरल लायकता, इन सब विषयों के बारे में तुम्हें अपने बेटों से बात करनी है, पर इनसे तुम्हें दूर नहीं हटना है। जो तुम्हारे लड़के को तुम्हारी राय, निर्देशन, इन विषयों पे की बहुत अमल ज़रूरत है। जैसे तुम इन विषयों के बारे में बात करोगे, तुम जानोगे कि तुम्हारे बीच में जो विश्वास है तुम्हारे लड़के का तुम्हारे ऊपर, वो बढ़ता जाएगा। मैं चाहता हूँ कि हम एक दूसरे से साफ साफ बात करें, खास करके जब सेक्सुअल बातों का विषय है। चाहे आप कुछ भी बोलो, जब हम इस दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पे लोग बहुत जल्दी सेक्सुअल चीज़ों में भाग लेते हैं, तुम्हारे बेटे के जीवन में वो चीज़ें हैं, तो पिताओं और गिरजे के नेताओं को साफ साफ इन चीज़ों के बारे में इनसे दूर रहकर अपने जीवन को साफ रखने को बताना है, और उनको ये बताओ जो ऐसी चीज़ें तभी होनी चाहिए हैं जब भगवान के सामने टेंपल कवनेंट्स और अनंत शादी का वादा किया गया है। स्टडीज ने दिखाया है कि जो कैजुअल सेक्स होता है उसे सबसे तरह से रोका जा सकता है जब हम खुद के संबंध बनाएं जिसके साथ में हम अपने बेटों को प्यार दें। अगर तुमने अपने बेटों के साथ ने इस बड़ी बात नहीं करी है तो उसे जल्दी करिए। अब अंत में मैं तुम सब रिटर्न मिशनरियों से बात करना चाहता हूँ। मैंने आज जो कुछ भी कहा है वो तुम्हारे लिए भी है। अपने पिता पर विश्वास करो, तुम उनसे और करीब जा सकते हो, चाहे तुम्हारी रिलेशनशिप कैसे भी रही हो मिशन से पहले, पर आने वाले सालों में तुम्हें सबसे अपने जीवन के अमल निर्णय करने हैं। अपने प्रार्थना में स्वर्गीय पिता में साथ में अपने धरती के पिता से राय की प्रार्थना करो, ताकि तुम्हारे पढ़ाई, तुम्हारे काम और शादी के निर्णयों के बारे में तुम्हें मदद मिल सके। सबसे जरूरी निर्णय जो तुम इस जीवन में करोगे वो सही लड़की से मंदिर में शादी करने के बारे में है, और चाहे रिटर्न मिशनरी कितने भी सोचे, ये इस निर्णय पे हमें हमेशा काम करना है, उन्हें डेट पे जाना है, साथ में सिर्फ समय बिताना है पूरा नहीं है। लड़कियों को तुम्हें दिल रिझाने की पूरी कोशिश करनी है। वो हमेशा काम करते हैं, अपने पिता से पूछो, वो जानते हैं। इस दुनिया के रास्ते से के रास्ते पे मत चलो, अपने सम्मान और आत्मा को बनाए रखो जो तुमने मिशन पे तुमने अनुभव किया था। गिरजे तुम्हारे नेतृत्व को आने वाले समय में चाहता है। और पिताओं, मैं तीन राय जो तुम्हें दी है वो तुम्हारे रिटर्न मिशनरी बेटों के लिए भी जरूरी हैं। उनसे उनको सुनो, उनके साथ में वार्तालाप करो और उनके साथ में भावनाओं और इच्छाओं के बारे में गहराई से बात करो। उनके साथ में प्रार्थना करो और उन्हें आशीर्वाद दो जैसे वो अपने आने वाले समय में जरूरी निर्णय करेंगे। भगवान तुम सब नव युवकों और पिताओं को प्रीस्टूड और एक दूसरे को प्यार करने वाली भावना दें, ताकि तुम्हारी संबंध एक दूसरे के बीच में जो वो और मजबूत हो और वो तुम्हारे जीवनों के अनंत लक्ष्य बने। ऐसा मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ। आमीन।
कई साल हुए एक योग प्रिस्टूड की ग्रुप ने गंभीर शक्ति और अधिकार से प्रचार किया। उनमें से एक इतना जबरदस्त था, उन पे विश्वास ना करना नामुमकिन था। इन प्रिस्टूड अधिकारियों ने सेविया और उनकी सिद्धांत के बारे में सिखलाया था। उनके शिक्षण और उदाहरण के कारण लोगों के हृदय में बदलाव आया। हम सीखते हैं कि हजारों ने उनके कारण बपतिस्मा लिया और कवनन बनाया कि वे अंत तक नियम का पालन करेंगे। मैं बुक ऑफ मोमन के मिशनरी के बारे में बतला रहा हूँ। इनमें लिहाई के बच्चों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उन्होंने जैसे कार्य किया, उस तरह हम भी शक्ति के साथ स्वर्ग पिता के बच्चों की सेवा कर सकते हैं और ईशो की तरह बन सकते हैं। सफलता पाने के लिए हम अल्मा द यंगा से एक चीज सीख सकते हैं। उन्होंने बुक ऑफ मोमन की पहली भाग इस्तेमाल किया था। जब उन्होंने हिलमन को अपना पुस्तक दिया था, उन्होंने बतलाया कि इन इतिहास के बिना वो लोगों को पश्चाताप की ओर नहीं ला सकते थे। परमेश्वर ने इस इतिहास के द्वारा लोगों को सच्चाई की ज्ञान दी। अल्मा ने बतलाया कि परमेश्वर आगे चलकर भी अपना शक्ति इस इतिहास के द्वारा लोगों को दिखलाएगा। इसलिए इस इतिहास को मैंने और अपने अपनाया है। जैसे उन दिनों, हम भी आज शक्तिमान प्रिस्टूड बुक ऑफ मोमन के द्वारा बन सकते हैं। बुक ऑफ मोमन की तरह कोई और किताब नहीं है। हम कह सकते हैं कि इस पुस्तक को परमेश्वर ने अपने उंगलियों से रक्षा की है। जब यीशु ने निफाई के लोगों के पास आया था, तब उन्होंने इन इतिहास के पुस्तक की मांग की थी। यीशु ने फिर उनको देखा और उनमें और बातें लिखवाया और फिर उन्होंने कहा, वो वाणी जो इनमें नहीं है, पिता ने आज्ञा दी है कि मैं तुमको दूं, क्योंकि वो चाहता है कि ये आगे
की वंश को मिले। मैं आभारी हूँ कि मैं उन वंश का हूँ जिनके विषय में मसीह ने बतलाया था। मैं बुक ऑफ मोमन का आभारी हूँ जिससे कि मैं गिरजा का सदस्य हूँ। मैं कभी नहीं भूलूंगा जब मैंने पहली बार यूरुग्वे में इस पुस्तक को पढ़ा था। मुझे फेस निफाय में बहुत नहीं पढ़ा जब मैंने आनंद महसूस की। पवित्र आत्मा कुछ इस तरह से मैंने महसूस किया कि जैसे मैं परमेश्वर के नज़दीक हो रहा था। मेरे अनुभव में और अर्थ आया जब मैंने प्रोफेसर जोसेफ स्मिथ के बयान को पढ़ा कि एक आदमी इन्हें पढ़कर परमेश्वर के नज़दीक हो जाएगा और कोई पुस्तक ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट थॉमस एस मॉन्सन ने एक वादा दिया था कि अगर हम बुक ऑफ मोमन को पढ़ेंगे और उनके नियमों का पालन करेंगे तो हम उनके सिद्धांत को समझ पाएंगे और जानेंगे कि यह इंसान का है या परमेश्वर का। यह वादा हमें आनंद देता है। जब मुझे बुक ऑफ मोमन का टेस्टिमोनी प्राप्त हुआ तब उसी के कारण मुझे महसूस हुआ कि मैं इस पुस्तक के नियम को निभाऊं। मैंने बपतिस्मा का कवनेंट लिया और गिरजा का सदस्य बन गया। इस कवनेंट के द्वारा और बुक ऑफ मोमन के ज्ञान के द्वारा मेरी जिंदगी बदल गया। सेवियर जब एंशिएंट अमेरिका में आया था जब उन्होंने निफाय को बपतिस्मा देने की शक्ति भी दी थी। इस प्रकार सिद्धांत और विधान एक साथ खड़ा दिखाई दिया। बुक ऑफ मोमन के शिक्षा प्रस्तुत के विधान से पूरी होती है। आजकल नई पुस्तकें मार्केट में रिलीज होती है। जल्द बेस्ट सेलर हो जाती है। कुछ पुस्तक इतने प्रभावित होती है कि लोग बेचैनी से उनका इंतजार करते हैं। मार्केट में ये पुस्तक भर जाती है और देखा जाता है कि लोग उन्हें सभी जगह पढ़ते हैं। लेकिन परमेश्वर ने बुक ऑफ मोमन को हमारे दिन के लिए लाया है। इसका इरादा बेस्ट सेलर नहीं बनना है, लेकिन हमें इस पवित्र पुस्तक को हमेशा पढ़ना चाहिए और उनके नियम को निभाना चाहिए। मैं 3 सलाह देना चाहूंगा जिससे बुक ऑफ मोमन से आप शक्तिमान प्रस्तुत अधिकारी बन सकेंगे। पहला तो आपको मसीह की वाणी की को पढ़ना चाहिए। अगर आप बुक ऑफ मोमन में मसीह की वाणी को पढ़ेंगे तब उनकी वाणी आपको बतलाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। ये आपके लिए एक अनोखा अनुभव होगा। अगर तुम सिद्धांतों और नियमों को पढ़ोगे और उनको देखेंगे तब हमें और उत्सुकता मिलेगा। जैसे कि जब नई पीढ़ी अभी की कठिनाइयों से गुजरते हैं, इस पुस्तक में उनको वो सच्चाई प्राप्त होगी जो उनकी मदद करेगा। जैसे लेमुएल के अनुभव से हम सीखते हैं। लेमुएल ने कुछ गलत चीजें अपनाया था क्योंकि उन्होंने लेमन के बातों पर विश्वास किया था। उसने ठीक नहीं किया था क्योंकि वह परमेश्वर के विषय में नहीं जानता था जिन्होंने उनको बनाया। हम इससे सीखते हैं कि अगर हम परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे तब ये शिक्षा हमारी दोस्तों के साथ रहने में मदद करेगा।
इसके बारे में हम बुक ऑफ मोमन से और ज्यादा सीख सकते हैं अगर हम उसको ध्यान से पढ़ेंगे। दूसरा, जो इशु के विषय में सीखते हैं उन पे हमें अमल करना चाहिए। इशु के गुण सीखना एक विशेष अनुभव है। जैसे कि ब्रदर जेरेड ने प्रभु की सच्चाई को समझा था, इसलिए वह झूठ नहीं बोल सकता था। यह मेरे हृदय में विशेष तरह की आशा लाता है। सारी वादाएं जो बुक ऑफ मोमन में है पूरी होगी, जो प्रोफेट ने आज के दिन के विषय में दिया था। कठिनाई के समय हमें आशीष मिलेगा अगर हम बुक ऑफ मोमन के दिए गए शिक्षण का पालन करेंगे। ब्रदर जेरेड की देखने वाली यीशु का गुण के बारे में जब हम सीखते हैं, हम उनको अपने जीवन में प्रयोग करना चाहिए। इससे हम शक्तिमान पृष्ठभूमि अधिकारी बनेंगे। तीसरा, बुक ऑफ मोमन के नियमों और सिद्धांतों का प्रचार करो। हम किसी को भी इस पुस्तक से पढ़ा सकते हैं। आप सोच सकते हैं जो परमेश्वर की शक्ति इसमें है। जब मिशनरी और परिवार का एक सदस्य इनके शब्द को पढ़ता है, वह ये शक्ति महसूस करता है। मुझे याद है जब इक्वाडो के प्रचारकों ने बुक ऑफ मोमन से निकलते समय और लौटते समय पढ़ते थे, उनके कारण कई लोग ने अपने हृदय में बदली महसूस की और बपतिस्मा ले लिया पवित्र पृष्ठ के द्वारा। बुक ऑफ मोमन एक पवित्र जर्य है जिससे हम लोगों को खोजकर उनको सच्चाई के विषय में बतला सकते हैं, उन्हें गॉस्पल की आशीर्वाद मिल सके। मैं जानता हूं कि परिवारों को रक्षा मिलेगी अगर वो इस पुस्तक की शिक्षण को अपनाएंगे। हमारे बच्चों का उद्धार होगा जब उन्हें इनस की तरह अपने पिता की बातें आनंद जीवन के विषय में याद रहेंगे और इसके कारण उनके पापों का क्षमा मिल सकेगा। मैं और आप जो भी अभी के पीढ़ी में से है, एक शक्तिशाली पृष्ठभूमि अधिकारी बन सकेंगे अगर हम बुक ऑफ मोमन का इस्तेमाल करेंगे और पृष्ठभूमि के कवनेंट को निभाएंगे। बुक ऑफ मोमन यीशु मसीह का बयान देता है। मैं यीशु मसीह का बयान देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से आमीन।
मैं तुमको कुछ युवा के विषय में बतलाता हूँ जो जीवन में आए थे जब मैं सियोल कोरिया में एक जवान बिशप था। कई साल पहले ये लड़के पास में ही रहते थे। उसमें से सिर्फ एक या दो गिरजा के सदस्य थे। जो लड़के सदस्य थे वे अपने परिवार में से अकेले सदस्य थे। सभी दोस्त थे और वे गिरजा खेलने के साथ रहने के लिए आते थे। सप्ते में वे पिंग पोंग खेलना पसंद करते थे और शनिवार को मनोरंजन खेलना पसंद करते हैं। काफ़ी उसमें से अच्छे विरतारते नहीं थे स्कूल में और लोगों के मानते थे कि वे बदमाश थे। मैं दो पुत्रों का जवान बेटा था। मेरे बच्चे 7 और 9 वर्ष के थे। मैं जानता नहीं था कि मैं इन युवा के साथ क्या करूं। वे झगड़ालू थे कि एक बार मेरे बीबी बोनयोंग मुझसे पूछा कि हम दूसरे वार्ड में चले जाएं ताकि हमारे बच्चों पर अच्छा उदाहरण वाले युवा मिले। मैंने प्रार्थना की कि स्वर्ग पिता को ताकि वो मुझको सहायता दे कि युवा को मदद करने में। मैं फैसला कर लिया कि मैं कोशिश करूंगा कि ये जीवन में बदलाव लाने में। मेरे दिमाग में एक वाणी आई। मैंने महसूस किया कि अगर वे मिशनरीज बन जाएं तो इनके जीवन में बदलाव आए हैं। उस वक्त से मैं बहुत आकर्षित हो गया और अपने ज्यादा से ज्यादा वक्त उनको मिशनरी सेवा के मूल्य कैसे खुद हो तैयार किया जाता है मिशनरी सेवा के लिए बदलना शुरू कर दिया। इस वक्त एल्डसियो जो फुल टाइम मिशनरी था हमारे वार्ड में आया। वो गिरजा में बड़ा हुआ और जब उसे पास आरोनिक प्रतिशत था तब उन्होंने युवा दोस्तों के साथ संगीत में भाग लेते थे। वो हमारे वोट के अशांति लड़कों से मिले। एल्डसियो उन्हें मिशनरी डिस्कशन दी जो सदस्य नहीं थे और उनको संगीत भी सिखलाया जो गाते थे। वे तीन क्वार्टेट बनाया इन लड़कों के और का नाम धरा हनारो क्वार्टेट जिसका मतलब है कि एक रहो। वे बहुत खुश थे साथ साथ में गाते हुए लेकिन हम सबको नम्रता धरना था कि जब वे गाते थे। हमारा घर हमेशा खुला था सदस्य के लिए। लड़के हमारे घर सप्ते के अंत में हमेशा आते थे कभी कभी सप्ते में। हम उनको खिलाते और सिखलाते थे। हमें उनको सुसमाचार का सिद्धांत सिखलाया और कैसे उनको शिक्षा को अपने जीवन में लाया जाए उनके आगे की मार्ग दिखलाया। साथ में गाना गाए जब जब मेरे घर को आए। उनके जोरों का आवाज हमारे कानों ढूंढते थे लेकिन फिर भी हम उनके जय जय कर करते क्योंकि यूं तो बदमाश करने से अच्छा कार्य कर रहे थे। सालों तक ऐसा चलता रहा। कई युवा समाचार की बुद्धि में बढ़ गए और चमत्कार हो गया। देखते नौ लड़के जो सदस्य नहीं थे बपतिस्मा ले ली। वे जोर झगड़ालू लड़के अब नहीं थे, बदल गए थे दिलेल सिपाही की तरह। वो मिशन्स पे गए, खूबसूरत लड़कियों को मिले गिरजे में और फिर मंदिर में विवाह किए। हाँ, उनका अलग अलग परिश्रम था जब वे मिशन और स्कूल गए और फिर शादी की लेकिन वे सब विश्वासी थे क्योंकि वे अपने लीडरों के आज्ञा पालन किया और प्रभु के प्रसन्न किया। अब उनके पास खुद परिवार है और बच्चे वादा के पड़े। नौ जोर से बात करने वाले बच्चे अब 45 एक्टिव सदस्य थे प्रभु के राज में बीवी बच्चों के साथ। अब वे लीडर थे अपने वो जो स्टेक्स में। एक बिशप है, दो बिशप्रिक में है, एक हाई काउंसिल मैन में और दो यंग मैन का प्रेसिडेंट, एक मिशन लीडर भी, एग्जेक्टिव सेक्रेटरी और सेमिनरी टीचर एक साथ वो अभी भी घंटे है। और अब दूसरा चमत्कार, उन्हें सुनने में अच्छा लगता है। यहाँ देखते हैं कि दो सिद्धांत का सीख है कि युवा हेलमन के लड़के के जैसे बन गए। यहाँ उनके माता गिरजा के सदस्य नहीं थे और प्रभु की वाणी नहीं जानते थे। प्रिस्टुड लीडरों को पिता बन गए और उनकी बीबी उनकी मामा। नौ लड़के उनका मैं प्रभु के लड़के बोलता था। सीखा कि उनको आशीष मिलता जब वे गिरजा के लीडरों को सुनते बावजूद कि उनके समझ में कुछ भी नहीं आता। वे एडम हमारा पहला पिता की जैसा होगा जो प्रभु को चढ़ावा देता था और जब स्वर्ग दूत पूछा चढ़ावा क्यों क्यों प्रभु के भेंट कर रहे हो और आदम ने कहा मैं नहीं जानता ये प्रभु का उपदेश है। वे आज्ञाकारी और प्रभु से सेवा पूरी दिल से किए। उन्होंने सीखा कि गिरजा के सभी मीटिंग्स में जाना जरूरी है। प्रेसिडेंट एजरा टेफ बेंसन ने कहा अपने भाषण में यूथ ऑफ अ नोबल बर्थराइट मैं अब तुम्हारे ध्यान में लाता हूँ कि गिरजा के सभी मीटिंग्स में जाना का मूल्य। विश्वास के साथ इन गिरजा के मीटिंग्स में जाने पर तुमको आशीष मिल गया और तुमको किसी की तरह मिल नहीं सकता। गिरजा के सब मीटिंग्स में जाने से उनको प्रभु का प्यार महसूस हुआ और सीखें कैसे इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लाएं। वे सीखे कि कैसे इन मीटिंग्स में खुशहाली और शांति मिलती है। अब हमारे अपने तीन बेटे, उसमें से जो सबसे छोटा था उस वक्त जन्म हुआ जब मैं बिशप था, जैसे हमारे बेटे बड़े हुए ये नौ लड़के उनके लीडर बन गए वोड और स्टेक के और वे हमारे बेटों के शिक्षा बन गए वे हमारे बेटों और सभी लड़कों को वैसे ही सिखा दी जैसे मैंने उनको दिया था वे हमारे बेटों से वैसा ही प्यार करते थे जैसे मैंने उनसे किया था ये जो पहली लड़ाई करने लड़के और हमारे बच्चों के हीरो बन गए थे हमारे बच्चे उनके नमूना देखकर मिशन्स पर जाना और सही साथी को मंदिर में ले जाना चाहते थे ये युवा हमारे परिवार पर अपनी प्रभाव बढ़ाते रहे दो महीना पहले हमारे वार्ड मिशन में एक मिशनरी का कार्यक्रम हुआ शनिवार को सभी को निमंत्रण मिला हमारा छोटा बेटा सुन युंग अभी युवा के कैंप से आया था उसने कहा कि वे ये मिशनरी की एक्टिविटी में नहीं जाएगा क्योंकि वे पार्ट मेंबर परिवार से नहीं था और वो थका हुआ था वो एक्टिविटी में नहीं आया मेरे पत्नी ने फोन किया और बताया कि सभी लोग को निमंत्रण मिला है आने के लिए उसने बोला हाँ मैं जानता हूँ लेकिन मैं नहीं आ रहा हूँ और फोन धर दिया फिर मीटिंग की शुरुआत हुई और सुंग यंग अपने माँ के पास चुपके से आकर बैठ गया अपने माँ से कानों में खामोशी से बोला जैसे मैंने फोन रखा मुझे याद आया कि पिता से एक बार मैंने पूछा था कि हनोरो कोटट के जिंदगी में कैसे सफलता आई तब उसने बताया कि वे लीडरों की वाणी की पालन किया और सभी मीटिंग्स में जाते ये बदलाव उनके जिंदगी में आया और वे सफलता पाए मेरे बेटा फिर बोला अचानक मेरे पिता की बात मेरे मन में आया और मैंने तय किया कि उनके जैसा खुश रहना चाहता हूं और जिंदगी में सफल बनना चाहता हूं। प्यारे भाइयों आओ हम अपने सब लड़कों से प्यार रखें चाहे वो बदमाश हो हम उनके जिंदगी के बदलावों के सबक दें आज का सन्स ऑफ हिलमन सिर्फ गिरजा के अनमोल परिवार से नहीं आते परंतु नया और जवान सदस्य जो गिरजा में आते जिनके माता पिता गॉस्पल में नहीं है तुम और तुम्हारे पत्नी इनके सच्चे माता पिता हैं जो तक वे सन्स ऑफ हिलमन ना बन जाएं मैं आनंद और खुश हूँ देखकर तुम्हारे सेवा इन जवान लड़कों के लिए ये जवान लड़के हमारे बेटे हैं जब हम उनके पास जाएंगे सहायता देंगे हम महसूस करेंगे जैसे जॉन ने कहा है मुझे और कुछ खुशी नहीं है ये देखते हुए कि हमारे बच्चे सच्चाई पर चले प्यारे जवान लड़कों आओ हम इस गिरजा के लीडरों को सुने और एडम की तरह रहे सवाल ना करें क्यों लेकिन खुश रहें क्योंकि हमारे आज्ञा पालन की है और विश्वास से मीटिंग्स में जाएं और अगर तुम ये करोगे तुम आगे की तैयारी करने जाओगे और तुम्हें सफलता मिलेगी जो जवान लड़के गिरजा में पैदा हुए और जो अभी आए हैं तुम साथ प्रभु के सेना हो तुम अव्वल मिशनरीज और आगे चलकर अच्छे पिता बन के अपने परिवार में स्वर्ग पिता तुम पर आशीष देगा सुखी परिवार के तुम्हारे भविष्य उज्जवल है इस गॉस्पल में और सन्स ऑफ हिलमन की तरह तुम हम सबको आनंद खुशहाली दोगे मैं तुमसे प्यार करता हूँ और जानता हूँ कि स्वर्ग पिता सबसे प्यार करता है इसलिए उन्होंने अपने एक लौता पुत्र मसीह को भेजा है प्रेसिडेंट थॉमस एस मॉनसन हमारा जीवित प्रोफेट है जो हमें राह दिखलाता है यीशु मसीह के नाम से आमीन
Thank you, brother.
धन्यवाद भाइयों Choir और congregation अब गाएगा Praise to the Man. गाने के बाद ये मेरी खुशी है कि मैं आपसे बोलूंगा मेरे बाद पहली प्रेसिडेंसी के पहले काउंसलर हेनरी बी आयरिंग फिर हमसे बोलेंगे हम आप Thank you.
मेरे प्यारे भाइयों, ये कितना बढ़िया चेहरे हैं। आप प्रीस्टूड होल दुनिया भर मेरे दिल को भरता है। जैसे मैं आप लोग के बारे में सोचता हूँ जो भगवान की आवाज है, हमारे जो हमने यात्रा करी है दुनिया भर, गिरजे के सदस्यों से मिलते रहे और प्रीस्टूड के चैनल हमने लोगों से मिले हैं। हमने सदस्यों से कई मुसीबतों के बारे में पता चला है जो उनके जीवन में आ रहे हैं। कई सालों से दुनिया भर तबाही मच रही हैं और परिवारों को अपने पैसे को बचाने के लिए मजबूर करना हुआ पड़ा है। हम आपसे बहुत नज़दीक महसूस करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं और आपके लिए प्रार्थना करते हैं। भाइयों, मैंने अपने जीवन में बहुत अच्छी और बुरी चीज़ें देखी हैं जिससे मैं जानता हूँ कि इस सर्दी का समय जाएगा और नया स्प्रिंग की आशा वाला भला समय आएगा, पर इस समय हमें भगवान में विश्वास रखना है, आशा के साथ ने उन काम करते जाना है। मैं सोच रहा हूँ अपने खुद के जीवन में, जहाँ आने वाले समय में ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था और मैं काफी चिंतित था। मैं 11 साल का था और मैं अपने पिता और माता पिता के साथ में एक एटिक में रह रहा था जो फ्रैंकफर्ट जर्मनी के पास में फार्म हाउस था। हम 2 साल में दूसरी बार रेफ्यूजीज थे और हम अपने आप को एक जगह में घर बनाने की कोशिश कर रहे थे जो हमारे पिछले घर से 300 माइल दूर थी। हमें लगा कि हम गरीब थे, पर हम उससे भी ज्यादा बदतर थे। सिर्फ हम एक कमरे में सोते थे और वो इतना छोटा था कि उसमें बिस्तर के आसपास चलने के लिए भी जगह नहीं थी, और उसमें हमारे पास में एक स्टोव था और कुछ मेज थी, और उस कमरे की दूसरी तरफ हमें उस जगह से जाना पड़ता जहाँ थे फार्मिंग के उपकरण थे। और जब भी मैं उसके पास में जाता था तो मैं सॉसेज को उस रास्ते से देखता था और उससे मुझे हमेशा भूख लगती थी। हमारे पास में बाथरूम नहीं था, पर एक आउट हाउस था। क्योंकि मैं एक रेफ्यूजी था और मेरे पास में एक ईस्ट जर्मन एक्सेंट था, और उस प्रकार मुझे लोग बहुत मजाक उड़ाते थे और मेरे जवानी के दिनों में, और इसकी वजह से मुझे डेकेड्स जो बीत चुके हैं, अब मैं उन अनुभव के बारे में सोचता हूँ और मुझे सिर्फ अच्छी चीजें दिमाग में आती हैं। प्रगति के बारे में मैं सोचता हूँ और मुझे याद रहती हैं छोटी दुख भरी बातें, पर खासकर मुझे वो समय याद रहते हैं जब हमारे परिवार एक साथ जुड़ा था। मैंने अपने पिता माता पिता दोनों से बहुत चीजें सीखी। मैंने उनकी दृढ़ निश्चय से सीखा। मैंने उन्हें देखा कि वो मुसीबत में कैसे विश्वास और साहस से सामना कर सफलता पाते हैं।
Knowing that some of you,
जानते ही हुए कि आप में से कुछ भाई ऐसे ही समय से गुजर रहे हैं, मैं आपसे आज रात बात करना चाहूंगा 2 नींव वाले विचारों से, जिससे जिन्होंने मुझे अपने जीवन के उस भाग में शक्ति दी। जो पहला नींव का चीज है वो है काम। आज तक मैं उस चीज से अपने दिल में मैं जानता हूं कि मेरे पिता एक सिविल सर्वेंट थे अपने पढ़ाई से और अनुभव से, और उन्होंने कई मुसीबत भरे काम करे, यूरेनियम माइनर, मैकेनिक, कोल माइनर, ट्रक ड्राइवर के काम करे, ताकि वो अपने परिवार को वो खाना दे सकें। वो सुबह जल्दी जाते थे और रात में देर से लौटते थे ताकि हमारे परिवार को सहायता मिल सके। मेरी माँ ने एक लॉन्ड्री को चालू किया और उन्होंने घंटे काम उसमें किया, और अपने बिजनेस में उन्होंने मेरी और मेरी बहन की मदद ली। मैं अपनी साइकिल से उसके लिए पिकअप और डिलीवरी का काम करता था। मैं उस समय नहीं जानता था, पर उस समय मैंने जो शारीरिक मेहनत करी उससे मेरी स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ज्यादा आशीर्वाद मिला। पर उससे हमारे जो अनुभवों ने हमें एक सही लक्ष्य की ओर ले जाने दिया। हमारी जो स्थिति थी वो एकदम से नहीं बदली, पर अगर हम एक साथ बिना दिमाग बदले उस पर दृढ़ निश्चय से काम करते रहें तो चीजें जरूर बदलेंगी। मैं आदमी, औरतों और बच्चों को कितना प्रेरित होता हूं जब मैं जानता हूं कि वो काम करना जानते हैं। भगवान हमें दिखाते हैं कि कैसे काम करना है। उन्होंने कहा है, इन द स्वेट ऑफ दाई फेस दैट शैल्ट थाउ ईट ब्रेड, द लेबर इज वर्दी ऑफ हिज हायर, एंड थ्रस्ट इन योर सिकल विद ऑल योर सोल्स एंड योर सिंस आर फॉरगिवन यू। जो बिना डरे काम करते हैं अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, उनके जीवन में, उनके परिवारों में, उनके गिरजों में, और इवन उनके देशों में आशीर्वाद आते हैं। भगवान हम पे जितनी हमारी श्रमता है उससे ज्यादा मेहनत करने की उम्मीद नहीं रखता है। वो जानता है कि हम कितनी मेहनत कर सकते हैं। वो हमारे श्रमता को दूसरों की श्रमता के साथ में मूल्य नहीं लगाता है। वो हमें वो काम दे सकता है, चाहे वो कितना बड़ा हो छोटा हो, जो हम क्षमता अनुसार कर सकें। काम से जो भी हमारी डर हो या भय हो वो मिट जाता है। चाहे हमारे जीवन में कैसी भी स्थिति हो, मेरे प्यारे भाइयों, हमें वो सबसे अच्छी चीज करनी है ताकि हम एक हमारी जीवन को बनाए जगह हम हमेशा अच्छा काम करें। हमें हमारी जो जंग है उसे निकाल फेंकना है और हमारे काम में दिल और दिमाग से काम लगना है। जब हमारी गाड़ी मिट्टी में फंस जाती है तो मेरी इच्छा, मैं ये सोचता हूँ कि भगवान उस आदमी की मदद करेगा जो उतरता है और उस गाड़ी को बर्धक्का लगाता है। प्रेसिडेंट थॉमस मॉन्सन ने इस बगा कहा है, सिर्फ मेहनत करने की इच्छा ही नहीं होनी चाहिए, तुम्हें मेहनत करनी है। अगर हम मेहनत करेंगे उसके करने की वजह से, सिर्फ सोचने की वजह से नहीं, हम उन लक्ष्यों को पा सकते हैं। अगर तुम अपनी लक्ष्यों को पीछे रखते जाओगे तो वो कभी भी पूरे नहीं होंगे। काम हमेशा हमारे जीवन में आशीर्वाद लाएगा। अगर हम अपने आप को दुनिया की जो चीजें हैं जिससे हमें पैसा मिले, हमारा नाम फैले, और पर हमारी आत्मिक और पारिवारिक प्रगति नहीं हो पाए, तो हम जल्द ही जानेंगे कि हमने गलत काम किया है। जो सही काम करते हैं वो हमारे घर में होता है, वो पवित्र काम है, और उसके जो प्रभाव है वो अनंत है, उसे रोका नहीं जा सकता है। वो हमारे प्रीस्टहुड वाले लोगों की काम की नींव है। ये याद रखो, इस दुनिया में सिर्फ थोड़े समय के यात्री हैं। हमें भगवान के दिए हैं वे चीजों को उन में लगाना है जिससे हमारे आत्मिक पंख बढ़ सकें। और भगवान के बेटों के रूप में हम उन ऊंचाइयों तक पहुंच सके जिनके बारे में हमने सिर्फ सोचा ही था। अब हम बड़े बूढ़े भाइयों के बारे में मैं कोई कह सकता हूं, रिटायरमेंट भगवान के खुशी के प्लान का भाग नहीं है। प्रीस्टूड की जिम्मेदारी के लिए इससे कोई रिटायरमेंट नहीं है, चाहे हमारी क्या उम्र हो या हमारी शारीरिक क्षमता हो। हम कह सकते हैं कि हम कर चुके हैं, हम जा चुके हैं छोटी चीजों के लिए, स्केटबोर्डिंग, पैराग्लाइडिंग जैसी चीजों में। उसको हमें हमारे काम जो गिरजे का है, भगवान के राज्य को बनाने के लिए है, उसके बारे में नहीं करना। उसके लिए हमें अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ में मेहनत करनी है। कई वो लोग भी हैं जो गिरजे में कई सालों की सेवा के बाद में उन्हें लगता है कि अब उन्हें एक समय मिलना चाहिए, चाहे वो आराम करें जब और दूसरे उनकी जगह काम करें। भाइयों, मुझे ये कहना है कि ये विचार मसीह के चेलों के दिमाग में नहीं होना चाहिए। हमें इस धरती पर अंत तक काम करते जाना है खुशी के साथ में हर दिन। मेलकिसेदेक प्रीस्टहुड के हमारे जो जवान भाई, उनके लिए भी मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जैसे तुम अपने पढ़ाई को पूरा कर रहे हो और अनंत स्पाउस को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम्हारे जीवन में वो सही गोल है, पर ये तुम्हें याद रखना है कि तुम्हें भगवान के खेत में काम करना है। और जैसे तुम वो करोगे, तुम्हारे रेज्यूमे बढ़ेगा और तुम्हारे जिस चीजों के लिए तुम्हारे लक्ष्य हैं, जो पढ़ाई है और अनंत साथी को ढूंढने वाले हैं, उनमें तुम्हें सफलता मिलेगी। चाहे तुम जवान डीकन हो या बूढ़े हाई प्रीस्ट हो, हमारे लिए काम करना है। अब दूसरा प्रिंसिपल है, वो है सीखने का। इन स्थितियों में जो इसमें जर्मनी के बाद में वर्ल्ड वॉर टू के बाद में मैं रहा था, वहां पे पढ़ाई के लिए बहुत कम मौके थे, पर मेरे दिल में हमेशा सीखने की इच्छा थी। तो मैंने एक दिन जब मैं अपने साइकिल पे था और मैं लॉन्ड्री को डिलीवर करने जाने वाला था, तो मैं एक घर पे गया और मैंने दो डेस्क को देखी दीवार के ऊपर उस घर में, और मुझे लगा कि बच्चे कितने खुशी थे कि उनके पास में उनके डेस्क थे। मैं सोच सकता था कि वो अपने खुली किताबों के साथ में वहां बैठ के उन्हें पढ़ेंगे और होमवर्क करेंगे, और मैं सोचता था कि वो कितनी अच्छी चीज होगी अगर मेरे पास में वो हो तो। पर मुझे लंबे समय तक उसका इंतजार करना पड़ा जब तक जब मेरे पास में वो डेस्क आए। बाद में जब मैं एक बड़ी लाइब्रेरी में रिसर्च करने लगा, तो मैं एक डेस्क पे बैठ सका था और पूरी वो ज्ञान को पा सकता था जो किताबें देती हैं। मुझे पढ़ना और सीखना कितना पसंद था। उन दिनों मैंने जाना उन गायकों और शेरों के के बारे में उन्होंने बताया है कि पढ़ाई हमारे जीवन में कितनी जरूरी है। गिरजे के सदस्य के लिए पढ़ाई एक अच्छी राय नहीं है, वो एक नियम है जिसे पूरा करना है। हमें इस स्वर्ग और इस धरती की सारी चीजों के बारे में सीखना है, जो घर की हैं, वो बाहर की है, उनके बारे में सीखना है और उन्हें जानना है। जोसेफ स्मिथ हमेशा सीखना चाहते थे, पर उनके पास में पढ़ाई के लिए मौके बहुत कम थे। उनकी लेखों में उन्होंने कई बार लिखा है उन दिनों के बारे में जिन्होंने बैठ के सिर्फ पढ़ाई करी। कर्टलैंड में जोसेफ ने सिखाया संतों कि इस जीवन में ज्ञान पाना बहुत जरूरी बात है। चाहे हम किस चीज को जीवन में पाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमें मदद करेगा जब हम पुनर्जीवन पाएंगे। اور جب مصیبت کے سمے میں ہمیں یہ جانا ضروری ہے کہ جیسے پروفیٹ جوزف اسمتھ میں سکھا ہے, گیان سے اندھکار اور بھائے دور بھاگتا ہے, کیونکہ وہ نہیں رہ سکتے جہاں پر گیان ہوتا ہے. بھائیو, تمہارے پاس میں ایک ذمہ داری ہے کہ تم جتنا سیکھ سکو اتنا سیکھو, اپنے پریواروں, اپنے کورم میں سدسیوں سب کو پڑھائی کرنے اور سیکھنے کے لیے دلاسا دو. جیسے تو اگر تم فارمل ایجوکیشن نہیں پا سکتے ہو تو کسی بھی طرح سے تم گیان کو پاؤ. ایسے انوبھو میں سب سے بڑھیا کتاب تمہاری یونیورسٹی بنے گی, اور وہ جہاں ہمیشہ کھلا ہوتا ہے. یہ دھیان رکھو اور ان موقع کو ڈھونڈو جس سے تم ورچوس اور اچھی کاموں کو سیکھو اور وشواس سے انہیں گیان کو پاؤ, نمر بھاونا سے, ٹوٹے ہوئے دل سے. جیسے تم اسے اپنے جیون میں وشواس سے اپناؤ گے, تم اپنے گیان کو بڑھاؤ گے, اور پھر تم بھگوان کے کام میں اپنے پورے شریر کو روشنی کو بھرو گے, اور پھر کئی چیزوں کو سمجھ پاؤ گے.
shall be filled with light and comprehend all things.
ہماری سیکھنے میں ہمیں ریولیشن کے فوارے کے بارے میں کبھی بھی بھولنا نہیں ہے. اسکرپچر اور ماڈرن جو ماڈرن کے اصلوں کے شبد ہیں ان میں کافی گیان ہے, ریولیشن ہے, جن سے ہم اپنے جیون کی مصیبتوں کا گیان پا سکتے ہیں. ہمیں مسیح کے بارے میں سیکھنا ہے, ہمیں وہ گیان پانا ہے جس سے شانتی, ستی اور انتتا کی رہسیوں کو کھولا جاتا ہے. بھائیو, میں اس سمے کے بارے میں سوچتا ہوں جب میں 11 سال کا ایک لڑکا تھا فرینکفورٹ جرمنی میں, جو سوچتا تھا کہ اس کے آنے والے سمے میں کچھ بھی نہیں پر ان کا اس کا مزاق بڑھے گا. میں ان دنوں کے بارے میں دکھ پر اچھی بھاونا دونوں کے ساتھ میں سوچتا ہوں, پر مجھے دل میں کوئی شنکا نہیں ہے کہ میں نے ان سیکھوں کو جب ان مصیبت والے سمے میں سیکھا تھا, وہ آنے والے سمے کے لیے میری تیاری میں مجھے مدد دی. اب آنے والے سمے میں ایک چیز میں ضرور سے جانتا ہوں کہ ان مصیبت کے سمے میں ہم سب سے اہم سیکھوں کو سیکھتے ہیں جس سے ہمارا پرکتی اور ہمارے لکش کو پانے میں ہمیں مدد ملتی ہے. میں پرارتھنا کرتا ہوں کہ آنے والے مہینے اور سالوں میں جیسے ہم اپنے گھنٹوں اور دنوں کو اچھے کام سے میں لگائیں گے, تو ہمیں ستیہ کے فوارے سے گیان ملے گا. اس کے لیے میں ہمیشہ پرارتھنا کرتا ہوں, اور میں اپنے تمہیں پیار اور آشیرواد کے ساتھ میں تمہیں الوداع کہتا ہوں عیسی مسیح کے نام میں, آمین.
جہاں کہیں بھی میں ہوتا ہوں میرے پاس اولیو آئل کی کنٹینر ہوتی ہے. یہ وہ ہے میرے کام میں بیچ والی ڈرور میں, یہ میں اس کو رکھتا ہوں.
There is one in my pocket.
ایک میرا جیب کے لیے بھی ہے جب میں باہر جاتا ہوں, اور ایک میرے گھر کے کچن کی کیبنٹ میں بھی ہے. اس میں ایک تاریخ لکھا ہوا ہے, یہ تاریخ اس دن کا ہے جب اس سے کنسیکریٹ کیا تھا. لوگوں کی آشیش ملے ایرن پرسٹن میں جو بچے ہیں,
वो सोच रहे होंगे कि मैं तैयारी कुछ ज्यादा ही करता हूँ, लेकिन दरवाजा पर बुलावा चौकरना से ही मिलता है कि कोई बोलेगा प्लीज जल्द आना, एक समय ऐसा हुआ कि एक पिता ने अस्पताल से फोन किया, 3 साल की बच्ची का गाड़ी से दुर्घटना हो गया था जब वह रास्ता क्रॉस कर रही थी। जब मैं अस्पताल पहुंचा, वह पिता प्रिस्टूट की शक्ति का भीख मांग रहा था। डॉक्टर और नर्स ने हमें बड़ी मुश्किल से बच्ची की सर जो पट्टी से भरी हुई थी में जगह खोजी जहां ऑयल की बूंद गिर सकी। डॉक्टर ने मुझसे कहा, जो कुछ करना है जल्द करोगे कि बच्ची मर रही है। वह गलत था, बच्ची जीवित रही और चलने भी लगी। जब बुलाया आया मैं तैयार था। तैयारी सिर्फ कॉन्सेक्रेटेड ऑयल रखने से नहीं होती, इसका शुरुआत संकट जिसमें इसकी जरूरत है उससे पहले होना चाहिए। इसे आप कार्य के लिए तैयार रहेंगे। इसका तैयारी परिवारों, एरोनिक प्रिस्टूट के कोरम और ज्यादा करके युवकों के जीवन में होती है। कोरम और परिवार का मदद जरूरी है, मगर महत्वपूर्ण तैयारी इन युवकों को करनी है। उन्हें प्रभु का प्रिस्टूट नौकर खुद बनना है। आज की पीढ़ी की प्रिस्टूट से बहुत उम्मीद है, ना कि सिर्फ पीड़ित को ठीक करना। उनको तैयार रहना है कि वे जाए और वो करे जो भी प्रभु चाहता है, जबकि हम उनकी आने की तैयारी कर रहे हैं। किसी को नहीं मालूम कि क्या करना होगा, लेकिन ये मालूम है कि कैसे हम तैयार रह सकते हैं। आज्ञाकारी सेवा में जो शिक्षा है वो ही उस वक्त काम आएगा। मैं तुम्हें दो चीज बतलाऊंगा जो जरूरी है और कैसे तैयार आपको होना है। पहला, विश्वास करना है। प्रिस्टूट प्रभु का अधिकार है या ईश्वरीय शक्ति इस्तेमाल करने का अधिकार है, तो तुम्हें विश्वास होना चाहिए कि प्रभु जीवित है। तुम्हारे पास उनका विश्वास है कि तुम उनकी शक्ति का सही इस्तेमाल करोगे। बुक ऑफ मोमन में एक उदाहरण है कि कैसे एक आदमी इसकी तैयारी करता है। पिष्टु अधिकारी नीफा को प्रभु ने एक कर प्रभु ने उन्हें भेजा कि वो दुष्ट लोगों को पश्चाताप करने के कहे। दुष्टता और जलन में वो एक दूसरे की जान ले रहे थे। उनकी शोक भी उनके विनम्र नहीं कर सकी कि वो पश्चाताप करे। निफाय के तैयारी के कारण प्रभु ने उन्हें कार्य पूरा करने की आशीष दिया। निफाय के लिए उनके प्यारे शब्द हमारे लिए एक मार्ग है। जिन कामों को तुमने किया है उनके लिए तुम धन्य हो निफाय, क्योंकि जिस वाणी को मैंने तुम्हें दिया उसके बिना थके तुम इन लोगों को देते हुए मैंने देखा है। और अब क्योंकि तुमने यह काम इतनी लगन और अथक प्रेम से किया है, तब सुनो, मैं तुम्हें सदैव के लिए आशीर्वाद दूंगा। और मैं तुम्हें वचन और कर्म में तथा विश्वास और कार्य में दृढ़ और शक्ति प्रदान करूंगा और तुम्हारे कहने के अनुसार सभी कुछ होगा, क्योंकि तुम कोई ऐसी इच्छा नहीं करोगे जो मेरी इच्छा के प्रतिकूल हो। सुनो, तुम निफाय हो और मैं परमेश्वर हूँ। सुनो, मैं अपने स्वर्ग दूतों की उपस्थिति में कहता हूँ कि तुम्हारी शक्ति इन लोगों के ऊपर होगी और मैं पृथ्वी को अकाल, महामारी और विनाश से इन लोगों के पापों के अनुसार दंग दूंगा। सुनो, मैं तुम्हें ये अधिकार देता हूँ कि तुम धरती पर, तुम जिस पर भी मुहार लगाओगे उस पर स्वर्ग में भी छाप लगेगा जाएगा। जैसे बुक ऑफ मोमन में बतलाती है, इन लोगों ने पश्चाताप नहीं किया। तो निफाय ने प्रभु को मौसम बदलने को कहा। उन्होंने एक चमत्कार मांगी ताकि लोग पश्चाताप करें। अकाल आया, लोगों ने पश्चाताप किया। उन्होंने निफाय से निवेदन किया कि बारिश हो। निफाय ने प्रभु से ये मांग की और प्रभु ने बारिश वैसा ही किया। एक क्षण में ये विश्वास नहीं आया और निफाय ही प्रभु की विश्वास नहीं पूरी, पर उन्होंने इस महान विश्वास और प्रभु की आत्मविश्वास को साहस और निरंतर परीक्षा से पाई है। तुम युवा के विश्वास का निर्माण करते हो ताकि आने वाले दिनों में उनका इस्तेमाल कर सकें। ये शायद छोटा कार्य होगा डीकन और टीचर कोरम में रिकॉर्ड रखने के लिए। कुछ साल पहले युवकों रिकॉर्ड रखते थे। परमेश्वर का ये एक बुलावा था जो कि उन्होंने 12 साल के बच्चों पर अपने कार्य के लिए विश्वास किया। उनमें से कुछ कोरम के सेक्रेटरी अभी गिरजा के अगुआ में है। वह दूसरों की रिकॉर्ड को पढ़ते हैं और उनको रेवोल्यूशन मिलती है जैसे उनके लीडर को मिलती थी जिन्होंने इनका सेवा किया था। वह तैयार था कि वे परमेश्वर पर भरोसा करें कि प्रभु अपना उन पर अपना इच्छा जाहिर करे। प्रभु ने कहा कि निफाय पर विश्वास कर सकता है क्योंकि वो नहीं मांगेगा जो परमेश्वर नहीं चाहता। इस तरह का विश्वास निफाय पर था क्योंकि निफाय रेवोल्यूशन पर विश्वास करता था और निभाता था। प्रभु को मानना और सुनना निफाय का अनुभव था जिससे वह तैयार हुआ। ये आपको भी करना चाहिए। मैं आज ये देख रहा हूँ। मैंने अभी जल्द डीकन, टीचर और प्रीस्ट को टोक देते हुए सुना है जो इस कॉन्फ्रेंस की तरह शक्तिशाली थी। जब मैंने उनको सुना तो मैंने महसूस किया कि हमारा नई पीढ़ी हमारे साथ है। मेरा प्रार्थना है कि मैं और हम सभी इनके साथ अच्छाइयों को अपनाएं और आगे बढ़ें। एरोनिक प्रिस्टूड को तैयार करना हमारे लिए एक आशीर्वाद है क्योंकि ये ही हमारी सेवा करेगा। जायन में सभी परफेक्ट नहीं है, सभी युवक तैयार नहीं होता। ये उनको खुद चुनना है, वह खुद का जिम्मेदार है। प्रभु का रास्ता है उनका प्लान के मुताबिक, लेकिन कई युवक है जिनको सहायता नहीं मिलती। अगर हम मदद नहीं करते हैं प्रभु हमसे पूछेगा। पिता जो अपने बेटे को बदलता नहीं और सिखलाता नहीं है वह एक दिन दुख झेलेगा। यह दुख उन सभी को मिलेगा जो युवकों की मदद नहीं करेगा।
Young men choose wisely and well in their days in the preparatory priesthood.
दूसरा चीज जो उनको चाहिए वो विश्वास है। उनके पास बहुत चीजें हैं और लोग हैं जो उनके नीचे गिरजा देते हैं और जिससे वह परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते और उनके प्रेम और पवित्र आत्मा का सच्चाई महसूस नहीं करते। उनके दोस्त शायद पाप को चुन रहे हैं। अगर वह पाप चुनते हैं तब प्रभु की ज्ञान उनमें से ढल जाएगी। हम उनकी मदद कर सकते हैं अगर हम उनसे प्रेम करेंगे उनको और उनको चेतावनी देंगे और उन पर विश्वास करेंगे। लेकिन हम उनकी और मदद कर सकेंगे अगर हम उदाहरण से सेवा और विश्वास दिखाएंगे। हमें अपना प्रस्तुत की शक्ति परमेश्वर की कार्य करने करके दिखलाना चाहिए। मेरे लिए उनका शिक्षा डॉक्ट्रिन और कवनेंट की 121 सेक्शन में साफ दिखलाता है। प्रभु चेतावनी देता है कि हमारा इच्छा पवित्र होना चाहिए और प्रस्तुत की शक्ति सिर्फ मानने से, समझने से, नम्रता से और प्रेम से बनाया जा सकता है। जब हम युवकों को समझाते हैं हमें घमंड या लालसा से नहीं करना चाहिए। हमें कभी मारना नहीं चाहिए। इस बड़ी स्टैंडर्ड का उदाहरण हमारे युवकों के लिए बनाना है। जब मैं टीचर और प्रिस्ट था मैंने इसे देखा है। मेरा बिशप और जो उनके साथ था हमें खोते हुए नहीं देखना चाहता था। उनका विचार प्रभु की प्रेम से भरा हुआ था। बिशप के पास एक तरकीब था कि कोरम्स के सभी अगुआ अपने कोरम्स के युवकों से मिले जिससे वह संडे को नहीं मिलता था। वे कभी सोने नहीं जाते थे जब तक वो उन युवकों से बातें नहीं कर लेते। बिशप ने कोरम के अगुआओं से बतलाया कि वह अपने घर की बत्ती रात को नहीं बुझाए जब तक उनको इन युवकों के बारे में रिपोर्ट नहीं मिलती। बिशप ने हुक्म नहीं दिया था, उन्होंने सिर्फ आज्ञा दी थी कि उनका बत्ती नहीं बुझेगा तब तक रिपोर्ट नहीं मिल जाता। बिशप और उनके साथी अपना कार्य अच्छी तरह से निभा रहे थे। वह प्रभु की भेड़ों के चिंता में थे। उनके लिए ये कार्य छोटा नहीं था। उनके उदाहरण से हमने सीखा कि प्रभु की सेवा कैसे किया जाता है। प्रभु हमें उदाहरण से तैयार करता है। मैं नहीं जानता कि वह हमारे विषय में क्या सोचते थे लेकिन वह हम पे विश्वास करता था। मुझे नहीं मालूम है कि बिशप ने इतने लोगों का उम्मीद कैसे ऊपर किया। मैं इतना बतला सकता हूँ कि यह मानने से, समझने से, नम्रता से और प्रेम से किया। बत्ती नहीं बुझने का मेथड सभी जगह नहीं चल सकता लेकिन उनका उदाहरण जो था युवकों के लिए चिंता, उनके पास स्वर्ग की शक्ति उनके जीवन में लाया और हमेशा होता रहेगा या उनकी तैयारी के लिए मदद करेगा जब परमेश्वर उनको अपने कार्य के लिए बुलाएगा। मेरा पिता मेरे लिए एक उदाहरण था जिससे विषय में मैं प्रभु ने 121 सेक्शन में युवकों की तैयारी के बारे में सिखलाया था। जब मैं छोटा था वह कभी कभी मेरे कार्य से निराश हो जाता था। वह मुझे बतलाता था उनकी आवाज़ से कि मैं अच्छा कर सकता था। वह पवित्र आत्मा को सुनता था। मैं जानता था कि मेरे पिता का डांट उनका प्रेम था। मैंने उनका प्यार ज़्यादा महसूस किया है जब वह जोरों से डांटता था। वह मेरा लीडर और ट्रेनर था जो कभी मारता नहीं था। मैं जानता हूँ कि वह डॉक्टर एंड कवनेंट के में दिया गया है वह पूरा होगा कि उनका प्रभाव हमेशा चलता रहेगा। जब पिता और लीडर और डॉक्टर इन कवनेंट की 121 सेक्शन के शब्द सुनेंगे उन्हें महसूस होगा कि उनको भी और अच्छा करना चाहिए। मुझे ऐसा महसूस होता है। कि आपको याद है कब जब आप कभी आपने एक बच्चे युवक को डाला था बिना पवित्र आत्मा से? क्या आपको याद है जब आपने बेटों को बलिदान करने के लिए किया था जो आप खुद नहीं करना चाहते थे? ऐसे में पश्चाताप आपका मदद करती है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम तैयार रहेंगे कि अपनी पीढ़ी को मदद करेंगे कि वो अपने प्रस्तुत कार्य में कार्य को करेंगे कि हमारे मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपके साथ रहेगा इस कार्य में। और ये मैं अपना बयान देता हूँ कि यीशु मसीह जीवित है और प्रेजेंट थॉमस एस मॉन्सन हमारा प्रॉफिट है, उसके पास सारी कीज है प्रिस्टूड का। और ये मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ, आमीन।
हम आपको याद दिलाते हैं कि टैबनेकल को क्वायर का प्रसारण कल सुबह 9:30 से 10 बजे तक माउंटेन द लाइट टाइम शुरू होगा। उसके बाद तुरंत संडे की सुबह का सेशन शुरू होगा। हम क्वायर को सुंदर संगीत के लिए आभारी हैं और उन भाइयों के लिए भी जो आज शाम को हमसे बोलेंगे। अब हम आभारी हैं कि हम हमारे प्यारे प्रॉफेट थॉमस एस मॉन्सन को सुनेंगे। प्रेजेंट मॉन्सन के बाद choir फिर गाएंगे Rise Up, O Man of God, प्रार्थना फिर 70 के एल्डर लेंस बी विकमन द्वारा करी जाएगी। प्रेजेंट मॉन्सन
You're a wonderful sight.
तुम कितने अच्छे दिखाई दे रहे हो जिनको मैं तो ध्यान से देख सकता हूँ। मैं उनके बारे में सोच रहा हूँ जो टेलीविजन और दूसरे तरीकों से इस प्रीस्टूड के सेशन को देख रहे हैं। हम एक प्रीस्टूड के रूप में इकट्ठा हुए हैं या इस कॉन्फ्रेंस सेंटर में दुनिया और कई जगहों में भी। हमने कई प्रेरित संदेशों को इस शाम को पाया है और मैंने उन भाइयों को अपने आभार जताता हूँ जिन्होंने हमसे आज इस बात करी है। मुझे सम्मान मिला है पर मुझे नम्रता से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भगवान की प्रेरणा मेरे द्वारा आए जैसे मैं आपसे बात करता हूँ। जैसे मैं न्यूज़ देख रहा था टेलीविज़न के ऊपर, मैंने देखा कि कहानियों में चीज़ें एक जैसी थी। उसमें एक चीज बराबर थी, वो था अब्बाए था। एक पिता को अपने बेटे बच्चे को मारने के लिए के लिए अरेस्ट किया गया क्योंकि वो रो रहा था। और उसके बाद में गैंग वायलेंस के बारे में रिपोर्ट थी और कई गैंग रिलेटेड मर्डरों के बारे में थी। उसके बाद में एक औरत की बारे कहानी थी जिसके बाद में और उसके साथ में दूसरी दुनिया भर लड़ाइयों की कहानियां भी थी। तो मैंने सामिस्ट के शब्दों के बारे में सोचा, सीज फ्रॉम एंगर एंड फॉरसेक रैथ। कई सालों पहले एक जवान कपल मेरे ऑफिस में आया था और मुझसे उन्होंने राय मांगी। उन्होंने कहा क्योंकि जीवन में एक बड़ी दुर्घटना हुई थी और उनकी शादी मुसीबत में थी तो उन्होंने उसके लिए एक अपॉइंटमेंट करा। पत्नी और पति के बीच में जो झगड़ा था उसे महसूस मैं कर सकता था जैसे ही वो ऑफिस में आए। जैसे पति ने धीरे धीरे अपनी कहानी बता तो उस पत्नी चुपचाप बैठे बैठे वो रो रही थी। जो नव युवक था वो हाल में ही मिशन से लौटा था और एक यूनिवर्सिटी में उसने काम को हाँ बोला था. वो भी यूनिवर्सिटी में थे और कुछ सालों एक साल डेट करने के बाद में वो यूटा गए और वहाँ उन्होंने सॉल्ट लेक टेम्पल में शादी करी और उसके बाद में वो वापस यूनिवर्सिटी गए और वहाँ उन्होंने पढ़ाई ख़त्म करी. और जैसे वो अपने पहले बच्चा उनका होने वाला था, पत्नी को अपने काम मिल चुका था, उनका बेटा पैदा हुआ, पर उनके 18 महीने की उम्र में उन्होंने एक छोटी सी छुट्टी मनाने का प्रयत्न किया. उस समय सीट बेल्ट बच्चों के लिए नहीं थे. तीनों की वो पहली वाली सीट में बैठे और बच्चा बीच में बैठे हुए थे. उस छुट्टी के समय पति और पत्नी के बीच में एक थोड़ा सा झगड़ा हुआ और जैसे वो झगड़ा बढ़ता गया वो इतना ज्यादा हुआ कि वो एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे. उसकी वजह से उनका बेटा रोना चालू किया और उसकी वजह से पति और गुस्सा हुआ और जैसे वो गुस्से में उसने एक खिलौने को उठाया और उसे अपनी पत्नी की ओर फेंका, पर पत्नी की जगह वो खिलौना अपनी बेटी की लगा और उसकी वजह से वो ब्रेन डैमेज हो गया और जिंदगी भर हैंडीकैप हो गया. ये एक बहुत दर्द भरी स्थिति थी, तो मैंने उन्हें दिल से उन्हें समझाने की कोशिश करी ताकि वो पश्चाताप कर पकें और विश्वास को बढ़ाने की कोशिश करी. और स्क्रिप्चरों में से हमने साथ में पढ़ा, पर मैंने उनसे उतने उस दिन के बाद में अब तक नहीं सुना है. मुझे सिर्फ उनके मुस्कुराते हुए चेहरे याद हैं जैसे वो मेरे ऑफिस से बाहर गए. मैं उनके बारे में सोचता हूँ तो मुझे वो शब्द ध्यान आते हैं. गुस्से से कुछ भी नहीं होता है, वो कुछ भी नहीं बनाता है, पर वो सब कुछ मिटा सकता है. हम सब ने गुस्से को महसूस किया है. वो तब आता है जब चीजें हमारी सोचे हुए रूप में नहीं होती. वो किसी चीज से वैसा होता है जैसे जिसने किसी जो किसी ने हमें कहा है. वो कभी कभार होती है जब हमें इंतजार करना पड़ता है किसी चीज को पाने के लिए. हमें गुस्सा तब आता है जब दूसरे लोग हमारे तरीके से नहीं दे सकते हैं, पर इस गुस्से के लिए कई कारण हैं. कई बार हम सोचते हैं कि हमें हमारे ऊपर गलत चीजें हुई हैं. प्रेसिडेंट हीबर जे ग्रैंड, जो गिरते के 7वें प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा कि जब वो यंग एडल्ट थे तो उन्होंने एक आदमी के लिए काम किया. उसने उन्होंने उनको बोला कि उन्हें $500 का $500 का चेक दिया. बोला कि मैं तुम्हें उससे ज्यादा पैसे नहीं दे सकता हूँ, पर एक और व्यक्ति के लिए जिन्होंने काम किया और उसने उसे मैंने $150 का चेक दिया, जबकि वो काम ज्यादा और मेहनत वाला था. हीबर को लगा कि उसके साथ में ढंग से व्यवहार नहीं हुआ, पर उन्होंने सोचा क्या वो आदमी वो दुख पहुंचाना चाहता था. तो इसलिए जब उन्होंने अपने दोस्त को ये कहानी बताई तो उन्होंने दोस्त ने कहा कि वो आदमी मूर्ख है जो उसे अपने अपमान मांगता है जब उसका अपमान करने की कोशिश ही नहीं करी गई है. अपोस्टल पॉल
कहता है गलतियन में, कैन वी बी एंग्री नॉट सिन, लेट अस नॉट सन गो डाउन अपॉन योर रैथ. मैं ये आपसे पूछता हूं कि क्या हम स्वर्गीय पिता की आत्मा को महसूस कर सकते हैं जब हम गुस्से में हैं? मैं जानता हूं कि वो मुमकिन नहीं है. बुक ऑफ मोर्मन के 3 नीफाई में से हम पढ़ते हैं, तुम में कोई भी झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अगर झगड़े की भावना तुम में है तो वो तुम मेरी नहीं है, वो शैतान की है, जो झगड़े का बाप है, जिसने हमारे दिलों में झगड़ा और गुस्सा डाला है ताकि हम एक दूसरे लड़ सकें. ये मेरे सीख नहीं है ताकि मैं आदमियों को एक दूसरे को लड़ाऊं झगड़े के साथ में, पर मेरी जो सीख है वो है इन चीजों को हमें नहीं करना है. अगर हम गुस्से से काम लेंगे तो फिर हम शैतान के प्रभाव में आ रहे हैं. कोई भी हमें गुस्सा नहीं रह सकता है, वो हमारा खुद का चुनाव है. अगर हम आत्माओं को हमारे जीवन में हमेशा रखें तो हमें हमेशा गुस्सा से दूर रहना है. मैं बयान देता हूं कि ये मुमकिन है. गुस्सा जो शैतान इस्तेमाल करता है वो कितनी तरह से नुकसान पहुंचा सकता है. हम कई लोग जानते हैं थॉमस बी मार्श और उनकी बीवी एलिजाबेथ के गाने के. प्रेजेंट मार्श मॉडर्न डे अपोस्टल थे जब गिरजे को धरती पे रिस्टोर किया गया. वो कोरम द 12 अपोस्टल के प्रेसिडेंट बने. जब सेंट फार वेस्ट मिजूरी में थे, एलिजाबेथ मार्श जो थॉमस की बीवी थी और उनकी दोस्त सिस्टर हैरिस, उन्होंने सोचा कि वो मिल्क दूध को एक दूसरे में बांटेंगे ताकि वो और वो चीज बना सकें. उन्होंने बोला कि स्ट्रिपिंग और मिल्क एक साथ जाएं. स्ट्रिपर जो अंत में आते थे वो उसमें ज्यादा क्रीम होती थी. सिस्टर हैरिस हमेशा उस पर अमल किया, पर सिस्टर मार्श उसको हमेशा वो चीज को चाहती थी. स्ट्रिपिंग उसको बचा के रखती थी और सिस्टर हैरिस को वो दूध बिना स्ट्रिपिंग्स के बेचते थे. इसकी वजह से दो औरतों के बीच में झगड़ा हुआ. जब वो अपने बीच में सद्भाव को नहीं बना सकी तब उसे होम टीचरों के पास में बात पहुंची. उन्होंने पाया कि एलिजाबेथ मार्श ने गलत काम किया था. उनके पति और वो इस निर्णय से को ठीक नहीं मानते थे, इसलिए वो बिशप के पास में गए. तो बिशप ने भी वही बात करी जो होम टीचर ने किया. तो थॉमस मार्श ने हाई काउंसिल से बात करी उस, और जब वहां बात नहीं बनी तो उन्होंने फर्स्ट प्रेसिडेंसी और चर्च से अपील करी. जो स्मिथ और उनके काउंसलर ने भी वही निर्णय किया जो होम टीचरों से चालू हुआ था. थॉमस बी मार्श जो उनकी बीवी के साथ में इस समय थे, वो हर निर्णय के साथ में और गुस्सा होते गए. वो इतने ज्यादा गुस्से हुए कि मजिस्ट्रेट के सामने गए और उन्होंने बोला कि मॉर्मन्स मिजूरी के खिलाफ थे और उनके एफिडेविट से, या शायद वो बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से गर्बर्न लिल्लबर्ग्स का एक्सटर्मिनेशन ऑर्डर लिखा गया, जिसकी वजह से 15,000 संत को घर से निकाला गया और उनके बाद में कई मृत्यु हुई उसकी वजह से. वो सब किसकी वजह से हुआ? क्योंकि एक झगड़ा दूध और क्रीम के बीच में हुआ. 19 साल के बाद सॉल्ट लेक वैली में आए थॉमस बी मार्श और उन्होंने ब्रिगम यंग से माफी मांगी. ब्रदर मार्श ने हेबर्ट सी किम्बल, फर्स्ट काउंसलर जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थी, उनको भी लिखा. उन्होंने कहा कि भगवान ने मेरे बिना बहुत अच्छा किया है और मेरे बिना उनके कोई काम नहीं रखा है, पर मेरे लिए मैंने सब खो दिया है, इस दुनिया की चीजें और कई इस दुनिया के बाहर की चीजें जिनको मैं पा सकता था.
Like this could afford. Apropos,
are the words of the poet.
Poet John Grieve Whittier ke shabd iske liye bilkul theek hai. Of all sad words of tongue or pen, the saddest of these it might have been. Jo cheez ho sakti thi uske bare mein mat socho mere bhaiyo, hum un bhavnaon ko apne dilon mein la sakte hain par agar main dhyan nahi de to wo gusse mein badal sakte hain aur uski wajah se phir hum dusron ki aur uske upar zahir kar sakte hain par do ये जो हमारे सदस्य हैं वो हमारे खुद के परिवार के लोग भी हो सकते हैं जिन पे हम ये गुस्सा निकालें जिन लोगों से हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. कई साल पहले मैंने एसोसिएटेड प्रेस में एक चीज पढ़ी थी जो बाद में एक न्यूज़पेपर में छपा. एक बूढ़ा आदमी अपने भाई की फ्यूनरल पे था और दोनों के पास में एक ही कैबिन था कनिस्टर न्यूयॉर्क में और झगड़े में उन्होंने इस कमरे को चौक लाइन के द्वारा बांटा और एक दूसरे से बात नहीं करी क्योंकि 62 साल पहले उनका झगड़ा हुआ था. ये कितनी दुख की बात है.
That anger. What a tragedy.
जब हम एक सोच के निर्णय करते हैं तो हमें उस निर्णय को करना है भय से नहीं और उन चीजों को नहीं कहना है जो गलत है और क्रोध से भरी हुई है. हेल्डर चार्ल्स डब्ल्यू पेनरोज की जो हिम है उनके शब्द मुझे बहुत पसंद है जिन्होंने कोरम द 12 फर्स्ट प्रेसिडेंसी में सेवा करे. वो शब्द इस प्रकार हैं, अपने भावनाओं पर पकड़ रखो मेरे भाई, अपनी आत्मा पे भी, तुम्हारी जो भावनाएं हैं उन पे ज्ञान की शब्द को इस्तेमाल करो क्योंकि जब तुम ऐसे करोगे एक सोचे हुए दिमाग में शक्ति है और जब तुम ऐसे चीज को सोचोगे तो तुम्हें सबसे चीज बराबर दिखाई देगी. हम सब एक भगवान के प्रीस्टहुड वाले हैं. जो उसका नियम है वो हम सबके लिए है. जो मेलकिज़ेदेक प्रीस्टहुड वाले हैं वो हमें बताता है कि हम भगवान के नियमों के अनुसार काम करेंगे और उन बुलावों को मैग्नीफाई करेंगे जिन पे हमें बुलाया गया है. जो आरानिक प्रीस्टहुड वाले हैं वो उनके आने वाले समय की जिम्मेदारी और काम के बारे में ताकि वो उन अपने आप को तैयार कर सकें. इस नियम को भगवान ने इन शब्दों में किया है कहा है, जो इन दो प्रीस्टहुडों को पाने के लिए विश्वासी रहे जिसके बारे में मैंने बोला है और अपने बुलावों को बढ़ाने में भी उन्हें आत्मा से पूर्णता मिलती है. वो मोसेस और एरन और अब्राहम के बेटे बनते हैं और गिरजे और भगवान के भी बनते हैं और वो जो इस प्रीस्टहुड को मुझसे पाते हैं वो मुझे खुद को पाते हैं और जो मेरे सेवकों को पाते हैं वो मुझे पाते हैं और जो मुझे पाते हैं वो मेरे पिता को पाते हैं और जो मेरे पिता को पाते हैं वो मेरे पिता के राज्य को पाएंगे. इसलिए जो भी मेरे पिता के पास में था वो उनको दिया जाएगा. भाइयों, बड़े वादे हमारे लिए सही होंगे अगर हम हमारे प्रीस्टहुड की जो नियम है उसका उसके नियम अनुसार पालन करें. मेरी इच्छा है कि हम स्वर्गीय पिता के लायक बेटे बने. हम अपने घरों में अपने नियमों का पालन करें ताकि हमारे दिल में कोई भी दूसरे आदमी के लिए जलन नहीं हो पर हम उनके जीवन में और खुद के जीवन में शांति लाए मसीह के शब्दों को अपने दिल में उतारने के साथ. इसके द्वारा सब लोग जानेंगे कि तुम मेरे सब चेले हो अगर तुम एक दूसरे से प्यार करोगे. ये मेरी प्रार्थना है, मेरी इच्छा है इस प्रीस्टहुड मीटिंग के अंत में, और ये मेरी नम्र और दिल से नम्रता भरी प्रार्थना है मेरे पूरे दिल और आत्मा से। मैं अपने स्वर्गीय पिता से उनके आशीर्वाद को मांगता हूँ ताकि वो अपने जीवन में जा सकें और तुम्हारे दिल और दिमाग और आत्माओं में उतरें और परिवर्तन लाएं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हमारे प्यारे स्वर्गीय पिता, हम कई जगह इकट्ठा हुए हैं इस अनुभव के जिसमें हमने आत्मा के प्यार को अनुभव किया है, और हम अपने अंदरूनी अभाव को आपको जताते हैं, और जिन अच्छे विचारों को हमने पाए हैं, और खासकर हम अपने आभार को जताते हैं आत्मा के प्रभाव के लिए। और जैसे हम इस सभा से जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे दिल और दिमाग में आज पवित्र आत्मा आए, और हमारे घर सब सावधानी से पहुंच सकें, और पिता हम भगवान के सेवक होने के लिए बहुत आभारी हैं, और प्रीस्टहुड होने वाले के लिए हम आशा करते हैं कि हम थोड़े और अच्छे होंगे जिसने हम पहले आए थे, और हम सच में अच्छे लायक युवक बन सकें। हम इस सभा को के अंत में आते हैं, और हम नम्रता और प्यार से कहते हैं, और इसी मसीह के नाम में हम कहते हैं, आमीन।